अभी जो रिसेंटली गोवर्धन इको विलेज जो कि वाड़ा एक बहुत बड़ा वहां पे फार्म हाउस डेवलप किया इसको चौपाटी गई है, वहां पे इन्होंने 2 करोड़ की किचन पूरा डिजाइन किया है। इतना बड़ा किचन है जिसमें अराउंड मोर देन 1000 पीपल कैन टुगेदर टेक प्रसाद। और उसके साथ साथ प्रभु जी फेमस है अपने बहुत सारे किचन के बहुत सारी कुशलताओं के लेके। स्पेशली प्रभु जी मैं जब लास्ट ईयर चौपाटी गया था वहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, 40 ईयर जुहू का सेलिब्रेशन था, तो प्रभु जी हिमसेल्फ विद स्मॉल टीम वहाँ पे इन्होंने 5-5, 10-10 हजार लोगों के लिए स्वीट्स बनाते थे प्रभु जी, जिसमें आप लोग जैसे बटर पाइनएप्पल हलवा, चॉकलेट फिरनी और गुलाब जामुन। तो प्रभु जी हिमसेल्फ विश्व कुक इज वेरी फेमस फॉर दिस थिंग, यू नो कि वो अभी आप कभी राधा नमा की यात्रा में जाएंगे तो 7-7 हजार लोगों के लिए प्रभु जी खुद ही अपना वहाँ पे स्वीट्स बनाते हैं सबके लिए। और उसके साथ साथ प्रभु जी का एक जो बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है वो उसमें है कि प्रभु जी इज फेमस फॉर डिजाइनिंग इस्कॉन किचन्स। अभी मोर देन 13 से ऊपर किचन इस्कॉन की प्रभु जी खुद डिजाइन कर चुके हैं, जिसमें मायापुर के अंदर, कैलकाटा के अंदर, कानपुर के अंदर और गुरुग्राम जो इस्कॉन गुरुग्राम है वहाँ पे भी कुछ प्रभु जी ने खुद किचन डिजाइन किया। तो यशरे डे बिफोर यशरे प्रभु जी खुद आए वहाँ पर ईश्वर के लाश में, उनका किचन भी प्रभु जी खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो मैंने प्रभु जी रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी प्लीज कम हेयर ऑल्सो एंड गिव योर लिटिल बिट सम मर्सी कि हमें, कल प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि बहुत एक किचन का टिप बता रहे थे कि छौक मारना भी एक साइंस है बहुत बड़ा, तो वेरी प्रैक्टिकल चीजें बहुत डिटेल में जाके प्रभु जी बताते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि प्रभु जी इज हेयर और प्रभु जी आए यहाँ पे और हमें संग देने के लिए। तो एक बार हरे कृष्णा बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा। रूपात कहते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस किचन रिलीजन। हरे कृष्णा। तो एक छोटा सा भजन गाएंगे आज, ये भजन श्रीला प्रभुपाद के द्वारा रचित है। इस भजन में वो अपने गुरु महाराज की स्तुति कर रहे हैं, उनका आविर्भाव आज है। तो हम ये भजन गा के आज का भागतम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसी के ऊपर आधारित करेंगे हम। तो कृष्णा तब पुण्य हबे भाई, ये एक भजन है। आप यदि आपके फोन पे ऐप किसी ऐप के अंदर ये भजन आपको मिल जाएगा। ये तो भी सरल इसका शब्द है, आप पीछे उच्चारण कर पाएंगे मेरे पीछे पीछे। कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, हे पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, हे पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोले तुमताय, ध्रुव अति बोले तुमताय, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियायति, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियायति, कृष्ण सेवाय जार तुलना से महंत गुरु जग तेरा मध्य उरो कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए कृष्ण तव पुण्य बेभाय तार इच्छा बलवान पाशा एते थन थन तार इच्छा बलवान पाशा एते थन थन ओए जाते गौरंगेर पृथ्वीते नगरादि समुद्र नद नदी पृथ्वीते नगरादि समुद्र नद नदी सकले लोए कृष्ण नाम सकले लोए कृष्ण नाम लोए कृष्ण नाम कृष्ण तव पुण्य बेभाय हे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे हे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवति बोल तुम कृष्ण तव पुण्य हबे भाय कृष्ण तव पुण्य हबे भाय आविर्भाव दिवस महा महोत्सव की जय निदाय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञान दमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं गणानुगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणानलिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञाननायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धव सिद्धान्तदन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रियः वैष्णवा सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो मेरा बहुत सौभाग्य है आप सभी भक्तों के बीच में आज इस बहुत पुण्य दिवस श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि में उनके बारे कुछ कहने का उनके जीवन चरित्र और शिक्षा के ऊपर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु कभी बहुत आभारी हूँ। मैं अभी हाल ही में कुंभ मेला में उनसे मिला था तो प्रभु जी ने मुझे आमंत्रण दिया यहाँ पे आने का। उनको बताया कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में आने वाला हूँ तो प्रभु जी ने मुझे आमंत्रण दिया तो उनके भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और आप सब भक्तों का भी। बहुत सुंदर मंदिर है। मैं एक बार पहले आया था करीब 2010 या 11 में मुझे याद नहीं पर बहुत साल हो गए पहले जब फर्स्ट टाइम आया था। ये सेकंड टाइम मैं पंजाबी बाग मंदिर में आ रहा हूँ और एक चीज़ जो मेरे को याद थी कि मंदिर बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है और राधिका रमन जी की छवि बहुत मनोहर है इतना मेरे ध्यान में 10 साल से है। तो श्रील सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र उनके शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे सुंदर भजन जो है ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। अच्छा हाँ दूसरा वाला बंद कर दिया ठीक है। तो वो इसमें कहते हैं कि अपने गुरु महाराज को पूरा श्रेय दे रहे हैं। श्री श्री झांत सरस्वती सची सुता प्रिय अति कृष्णा सेवाए जार तुला नाए। कह रहे श्री सरस्वती ठाकुर जो है वो बहुत बहुत प्रिय है किनको सची सुत महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय हैं और उनके समान किसी की भी कृष्णा सेवा जो कृष्णा सेवा उन्होंने की है भगवान की सेवा उन्होंने की है प्रचार करके उनके समान और कोई तुल्य नहीं है सेवा में। वो ऐसे गुरु हैं, सही से महंत गुरु जग तेरा मध्य गुरु कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए, तो वो उनके ही प्रचार से कृष्ण भक्ति आज जगह जगह पे लोगों को प्राप्त हुई है। फिर कहते हैं तार इच्छा बलवान, वास्तव में सरस्वती ठाकुर की बहुत तीव्र इच्छा थी कि ये कृष्ण भक्ति जो है पाश्चात्य देश में इसका प्रचार हो, और उन्होंने अपने कई प्रचारकों को भेजा भी था और प्रभुपाद को भी कहा था पहली मीटिंग में, आपको ध्यान होगा कि यू आर अ लर्नड पर्सन, यू आर वेरी एजुकेटेड, यू शुड स्प्रेड महाप्रभुज मिशन, महाप्रभुज टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पहली मीटिंग में कहा था। अब सोचिए, आप पहली बार कोई मंदिर में आए, आप मंदिर में आए पहली बार, आप देख रहे हैं और कोई आपको पकड़ के कहे कि आप दुनिया भर में प्रचार कीजिए, अब तो प्रचार आपको तो कुछ पता ही नहीं है भक्ति के बारे, आप जैसे कोई पहली बार कोई आ जाए और उसको ऐसा कह दीजिए कि आप प्रचार कीजिए कृष्ण भक्ति का, है ना, तो वो तो, लेकिन पहली मीटिंग में उन्होंने सरस्वती ठाकुर ने कह दिया। अभी अभी नाम भी नहीं पूछा, देखिए कोई किसी से मिले तो कुछ नाम वगैरह तो पूछना, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, है ना, कोई नाम परिचय तो होना चाहिए कुछ बोलने से पहले, परिचय भी नहीं और कह दिया कि दुनिया भर में प्रचार करो पहली मीटिंग में। आप सोचिए, कोई आप किसी को कॉलेज में जाके कोई स्टूडेंट आए, आप किसी को कह सकते हैं ऐसा, ए भाई मैराथन चल रहा है, कोई पहली बार आए, आप 1000 महाबुक बांटिए, महाबिक उसने तो गीता कभी देखी भी नहीं हाथ में लेकर के, आप किसी को कह सकते हैं तो अगली वो आएगा नहीं दोबारा, है ना, अगर आप किसी को ऐसा कह देंगे तो। परंतु देखिए प्रभुपाद का संबंध उनके साथ, जैसे हम बोलते ना, परिचय भी नहीं हुआ, बहुत पहले का परिचय है ना उनके गुरु है, वो एटर्नल रिलेशनशिप है, बहुत पहले का परिचय है, तो मिलते ही जन्मों जन्मों का परिचय है तो पहली बार मिलते ही आदेश दे दिया कि आप विश्व भर में प्रचार कीजिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं तार इच्छा बलवान, बहुत उनकी बलवान इच्छा है, पहली बार में तो वही आदमी अगर इतनी इच्छा बलवान तभी तो गएगा, नहीं तो पहली बार में इतना बड़ा आदेश कैसे दे देगा, है ना। तो उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि ये प्रचार हो कृष्ण भक्ति का पाश्चात्य देशों में, सभी विश्व भर में, तो इसलिए ऐसे उन्होंने आदेश दिया प्रभुपाद को और सभी सभी को आदेश दिया शिष्यों को। परंतु प्रभुपाद ने वो आदेश वो हृदय में धारण किया, उसको बहुत सीरियसली लिया और उसके उसके लिए बहुत प्रयत्न करके उनकी इच्छा को पूरा किया। लेकिन कहने के उनकी इच्छा थी, उनके इच्छा के कारण ही आज सभी देशों में होए जात गौरंगेरा नाम, महाप्रभु का गौरंग महाप्रभु का नाम सभी देशों में आज लिया जा रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा थी। पृथ्वी ते नगर आदि असमुद्र नदन आदि सकल ही लो कृष्ण नाम, पृथ्वी में सभी नगरों में समुद्र के पार नदी नदियों में सब प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग टाउन्स में आज चैतन्य महाप्रभु का नाम हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है, उनका पूरा श्रेय शिला सरस्वती ठाकुर को जाता है, उनकी इच्छा से सब हो रहा है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो वास्तव में भक्तों की इच्छा बहुत बलवान होती है, शुद्ध भक्त जो भी इच्छा करते हैं वो बहुत बलवान है और भगवान उसे पूर्ण कर ही देते हैं। भगवान बल्कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं नल कुबेर मणिग्रीव के उपलक्ष में कि ये दोनों लोग पी के नग्न स्त्रियों के साथ घूम रहे थे, मेरे को इनको लेना देने नहीं है इनको इनसे कुछ, लेकिन देव ऋषि में प्रियतम देव ऋषि है, बहुत मेरे प्रिय हैं, उन्होंने कह दिया है कि आपको दर्शन होगा तो इनको भी मैं दर्शन देता हूँ जाके इन नलायक लोग को, नहीं तो मैं तो इनकी तरफ देखता भी नहीं, है ना। तो भगवान के भक्तों ने कोई इच्छा की तो भगवान जो है भक्तों के बहुत अधीन है, वश में है, उनके प्रेम के वश में है, वो पूरा करते ही हैं विवश होके। तो इसी तरह से श्री सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति प्रचार हो पूरे विश्व भर में, तो प्रभुपाद ने कहा मैं उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, निमित्त बन गया, लेकिन उनकी इच्छा तीव्र है, भगवान को उनकी इच्छा पूर्ण करनी ही है। ऐसे ही प्रभुपाद भी ऐसे शुद्ध भक्त है, जो भी उन्होंने इच्छा की व्यक्त है ना, कह दिया कि आप बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाइए मायापुर में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, देखिए अभी आ रहा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, केवल उनके एकमात्र इच्छा करने से कि ऐसा होना चाहिए यहाँ पे मायापुर में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, अम्बरीश प्रभु कह दिया और भक्तों कुछ कह दिया, एक प्रोटोटाइप कुछ को डायरेक्शन प्रभुपाद ने दे दिया, अभी उनके इच्छा के अनुसार इतना बड़ा भव्य मंदिर प्रकाशित हो रहा है। जहां जहां भी जो भी शुद्ध भक्त ने इच्छा की आप देखेंगे भगवान उसको पूर्ण करते ही हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद मुंबई में काफी समय रहे हैं, जब वो अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस और अपना वहीं पे वहीं से वहां पे जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के मालिक थी उनका नाम सुमति मुरारजी से भी मुंबई में ही मिले, तो कई समय मुंबई में रहे हैं और मुंबई में भारतीय विद्या भवन चुबाड़ी मंदिर के बिल्कुल सामने है तो ऑपोजिट, और वहां भी कई बार आए हैं। और एक बार प्रभुपाद जी वहां पे आए और उनके साथ में श्याम सुंदर प्रभु थे उनके सेक्रेटरी, तो प्रभुपाद ने वहां खड़े होके एक ऐसा चुबाड़ी भारतीय विद्या भवन के सामने एक लेन गया है उसका नाम है के एम मुंशी मार्ग, तो मुंशी कुंभ मुंशी मार्ग की तरफ देखा और सामने बहुत फेमस मंदिर है बाबुलनाथ जी का, एक शिव जी का मंदिर है भारतीय विद्या भवन के जो एक लेन है और सामने एक बाबुलनाथ जी का मंदिर है, तो प्रभुपाद देखने लगे लेन में और कहने लगे कि यहाँ हमारा भी मंदिर होना चाहिए, ये श्याम सुंदर प्रभु ने बताया। तो तभी ये 1970s की बात है, तो 1985 में वहां पे इस्कॉन चौपाटी शुरू हुआ 10-12 साल के बाद, उन्होंने कहा यहाँ हमारा मंदिर होना चाहिए, तो बिल्कुल वही लेन में इस्कॉन चौपाटी है जो लेन में प्रभुपाद ने दृष्टिपात किया और कहा यहाँ हमारा मंदिर होना चाहिए। तो भक्तों की इच्छा, शुद्ध भक्तों की इच्छा बहुत बलवान होती है, इच्छा मात्र से किसी के ऊपर वो आशीर्वाद दे दें, किसी को कह दें कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आपके ऊपर हो, वो आपको भगवत धाम ले जाएं, ऐसा प्रभुपाद ने कई भक्तों को कहा था। और यद्यपि वो कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं भी रह पाए बीच में, लेकिन अंतिम में फिर दोबारा जुड़ गए क्योंकि प्रभुपाद ने उनको कहा था कि आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी अब भगवत धाम जाएंगे, और वो वास्तव में हुआ। तो वचन मात्र से शुद्ध भक्त जो है इच्छा उनकी बहुत बलवान होती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं मेरे गुरु महाराज की इच्छा बहुत बलवान है, उन्हें इच्छा की हो उसका पूर्ति हो गई होगा। तो ये सुंदर भजन है जो प्रभुपाद ने स्वयं स्तुति की है, हमने सोचा उससे हम शुरू करेंगे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ 6 फरवरी 1874 में, कितने साल हो गए, आज उनका 145वां वर्ष है, 1874 में उनका आविर्भाव हुआ श्री क्षेत्र पुरी में 6 फरवरी को। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर उनके जो पिताजी थे, उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु की जीवन कथा और उनके शिक्षाओं के बारे पढ़ा तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिला, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका प्रचार होना चाहिए। लेकिन जो महाप्रभु जय श्री श्री अधिकार मन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बहुत उत्कृष्ट हैं और बहुत महत्वपूर्ण है मानवता के लिए, उनका प्रचार होना चाहिए। लेकिन उस समय जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे उनमें बहुत से अपसंप्रदाय आ गए थे, कहते हैं कि जो मेन क्रीपर के जो मेन वृक्ष लता होती है शुद्ध भक्ति की लता, आसपास उसके इतने ज्यादा अन्य पौधे हो गए थे, घास घास उग गया था, वीड्स जिसको बोलते हैं, कि वो मेन जो क्रीपर है मेन लता है वो दिखाई नहीं पड़ रही, वो छुप गई थी, बाकी सब उसमें तो बहुत से अब सिद्धांत आ गए थे चैतन्य महाप्रभु के, जो शुद्ध भक्ति का जो प्रचार था वो कहीं नहीं हो रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रयास करने लगे कि महाप्रभु के जो हरिनाम संकीर्तन है और शुद्ध भक्ति का जो संदेश है उसका प्रचार किया जाए, लेकिन बहुत कठिन हो गया था उस समय, बहुत कठिन हो गया था। तो उन्होंने फिर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, मैं कितना प्रयास करूंगा, कितने लोगों से संघर्ष करूंगा। उनकी जो प्योर टीचिंग थी वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा कवर अप हो गई थी। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, इस कार्य के लिए आप अपने एक निजी पार्षद को भेजिए। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और विशेष रूप से उन्होंने बिमला देवी जी से भी प्रार्थना की। जगन्नाथ मंदिर में आप दर्शन करेंगे तो जैसे बाहर आएंगे आप देखेंगे, बाहर आते ही एक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बिमला देवी का मंदिर है। तो उन्होंने प्रार्थना की और उनके प्रार्थना स्वरूप उनको एक छोटे जो बालक प्राप्त हुए, तो उन्होंने उनका नाम बिमला प्रसाद रख दिया। तो उन्होंने बिमला प्रसाद उनका नाम रखा। और जब वो बच्चे जो थे उनके जब उनके जन्म हुआ, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, नाड़ जो रहती है वो एकदम ब्राह्मण के जो थ्रेड की तरह वो उनके ऐसा चेस्ट पे ऐसा लिपटी हुई थी, तो वो देखा गया। तो मालूम चला कि ये साधारण नहीं बालक है, विशेष बालक है। तो जब जगन्नाथ जी का जब बिमला प्रसाद 6 महीने के थे, उनकी आयु 6 महीने की थी, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और जगन्नाथ जी का रथ उनके घर के सामने आके रुक गया। और प्रयास कर रहे हैं लोग खींचने का, एक दिशा में खींच रहे हैं रस्सी, इधर खींच रहे हैं रथ उधर चला गया, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, रस कुछ साइड में चला जाता है, रथ मेन रोड छोड़ के साइड में चला जाता है। एक बार 1999 में हम लोग रथ यात्रा के लिए गए थे, सब भक्त लोग एक रथ यात्रा में कीर्तन के लिए, इतना भीड़ था फिर भी हम जगन्नाथ जी के सामने प्रयास करके धक्का मुक्की में कीर्तन किए। तो क्या हुआ, शाम होने से पहले खींच रहे रथ एक साइड में मुड़ गया चक्का, अभी स्टेयरिंग व्हील तो है नहीं, रस्सी से खींच रहे हैं लेकिन रथ जाके कोने में जाके अटक गया और फिर सूर्य अस्त हो गया तो चला ही नहीं रथ, एक दिन रुक ही गया वहीं पे। ऐसा कई बार हो जाता है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगले दिन और जो रथ यात्रा दिन लोग आते हैं वो लोकल लोग आते हैं, ज्यादा करके कोई रात को रुकता नहीं है, आके रथ यात्रा के बाद सब निकल जाते हैं। सब लोग निकल गए और अगले दिन खींचने के लिए बहुत ही कम लोग, तो हम लोग इस्कॉन के ही लोग खींच रहे रथ पूरा तो रथ यात्रा जो है ऐसा लग रहा था इस्कॉन की रथ यात्रा हो गया। अभी पूरा हम लोग कीर्तन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, रथ खींच रहे हैं, फिर रथ को अगले दिन पहुंचा रथ वहां पे। तो हम पहले दिन सोच रहे थे कि हमको अवसर नहीं प्राप्त हो रहा जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करने का, बहुत भीड़ है, सब कुछ है ना, धक्का मुक्की है, लेकिन जगन्नाथ जी है एक साइड में मुड़ के खड़े होकर रुक गए, अगले दिन जाएंगे तो कविराज गोस्वामी कहे हैं चंद्रचरितामृत में, अपना इच्छाए चले ना चले कारो बले। तो कहते देखिए जगन्नाथ जी जो हैं ये ऐसा नहीं कि लोग खींच रहे हैं इसलिए चल रहे हैं, ये अपनी इच्छा से चल रहे हैं, जब स्टीयरिंग घुमा देते हैं किसी डायरेक्शन में तो फिर दूसरा कोई कैसे भी खींचता रहे तो मुड़ते नहीं है, अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपना इच्छाए चले ना चले कारो बले। तो इसी तरह से जगन्नाथ जी जब ये 1874 की जो रथ यात्रा है उसे एक कोने में जाके भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आके रुक गए, ऐसा स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया थोड़ा लेफ्ट साइड में रथ का, रुक गए वहां पे। 2 दिन तक नहीं चले वहां से, लोग खींचते रहे। तीसरे दिन भक्ति विनोद ठाकुर की धर्म पत्नी भगवती देवी ये 6 महीने के बच्चे को लाके रथ पे रख दी विमला प्रसाद को, और बच्चे ने ऐसा हाथ बढ़ा करके जगन्नाथ जी के चरण कमलों की तरफ स्पर्श किया और जगन्नाथ जी का हार उनके ऊपर गिर गया और सभी लोग हरी ध्वनि किए हरी हरी। तो सब भक्ति विनोद ठाकुर ने जब ये बात को जाना, उनके धर्मपत्नी ने बताया कि ऐसा हुआ आज, तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने जाना कि जगन्नाथ जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इन बच्चों को भेजा है, और फिर उनको आशीर्वाद दे के ही जगन्नाथ जी आगे निकले, वेट कर रहे थे कि कब उनको लेके आएंगे, आशीर्वाद दे के आगे निकलूंगा। तो फिर तीसरे दिन उनको आशीर्वाद दे के तब आगे निकले, गुंडीचा गए। तो ऐसा देखिए, शुरू से ही उनके ऊपर भगवान का बहुत आशीर्वाद था, बहुत कृपा थी। वो साधारण भगवान के पार्षद थे जो इस धरती पे आए थे। 4 साल की उनकी जब उम्र थी तो उन्होंने घर में एक आम उठा लिया, आम उठा के खाने लगे। अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा कि हे, ये कृष्ण का भोग है, अभी भोग नहीं लगाया हमने, है ना, रखा हुआ था एक साइड में, तो अभी अभी बच्चों को क्या पता है भोग नहीं लगाया और भोग लगा है कि नहीं लगा है ना, अभी देखेंगे। 4 साल के बच्चे को पूछते हैं कि क्या ऑफर किया कि नहीं किया। 4 साल के कई बार तो हम भी खाने के बाद पूछते हैं ऑफर था क्या है? पहले थोड़ा सा खा लेते हैं फिर सवाल पूछ लेते हैं कई बार, ऑफर किया था क्या इसको, बाद में ध्यान आता है कि थोड़ा पूछ लेना चाहिए ऑफर था कि नहीं। तो 4 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे क्या पूछेंगे ऑफर किया कि नहीं किया, जो भी है सब भगवान का प्रसाद ही उनके लिए, तो है ना। तो खाली उठा के आम, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रेम से कहा नहीं नहीं ये अभी भोग नहीं लगा है। तो उनको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने 4 साल की उम्र में ये ऐसा कसम खाई कि मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। आप सोचिए, 4 साल के बच्चे ने ऐसी वहां पे प्रतिज्ञा की कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है, उनका भोग खा लिया है और मैं अभी जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। अगर हम ऐसे चीजें गिने कि हमने क्या क्या खाया बिना भोग लगाए, तो हमको तो पूरा पूरा जिंदगी भर उपवास ही करना पड़ेगा सबसे, है ना, हर चीज कुछ खा ही नहीं पाएंगे हम तो सर, अगर ये स्टैंडर्ड से चलेंगे तो। हमने तो सब आइटम खाया बिना भोग लगाए, है ना, कोई भी चीज बची नहीं है। उन्होंने एक आम खाया जो भगवान को अर्पित नहीं था और उसकी प्रतिज्ञा की है मैंने अपराध किया है खा करके, अभी मैं आम नहीं खाऊंगा जिंदगी भर। तो उनको पूरा जीवन भर उन्होंने फिर बाद में आम नहीं खाया, देखिए ऐसा उनका दृढ़ प्रतिज्ञा था, ऐसे आचार्य थे। और उनको कोई आम लाके देता था, समर्पित करता था, तो कहते थे कि नहीं मैं अपराधी हूं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसको भक्तों में बांट दीजिए भोग लगाकर, ऐसा। तो जिंदगी भर आम नहीं खाया उन्होंने, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंगो शेक पी लेते थे, ऐसा भी नहीं। हम लोग क्या कुछ प्रतिज्ञा करेंगे थोड़ा उसका कोई ऑल्टरनेट निकाल लेंगे थोड़ा कुछ है ना, तो थोड़ा चालू काम बोलते हैं हमारे उधर महाराष्ट्र में, थोड़ा चालू काम कर लेते हैं हम, थोड़ा पतली गली ढूंढ लेते हैं ना, सही मार्ग देखे के बंद है तो थोड़ा कोई पतली गली ढूंढ लेते हैं, गली से निकल जाएंगे। तो चलो मैंने तो कहा कि आम नहीं खाऊंगा लेकिन मैंगो शेक बना के दे दो, चलो तो आ ही गया मैं आम उसमें, ऐसा नहीं, वो भी नहीं। तो पूर्ण रूप से जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली उसको पालन करते थे उसका, उसमें ऐसा नहीं कि अभी कुछ दूसरा कोई रास्ता निकाल दिया आम खाने का, ऐसा कुछ है। 4 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा किया। तो 6 साल की उम्र में उन्होंने पूरी भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया, 6 साल की उम्र में 700 श्लोक उनको कंठस्थ थे भगवद गीता के, उसको उच्चारण कर सकते थे, उच्चारण ही नहीं उसका अर्थ भी बता सकते थे, भगवद गीता के कोई भी श्लोक पे उसका अर्थ और उसका व्याख्या 6 साल की उम्र में कर सकते थे। तो ऐसे बहुत ही विशेष आचार्य थे श्री दशरथ ठाकुर, और कहा गया है कि स्कूल में, जब वो स्कूल में थे तो स्कूल की किताब से ज्यादा उनको अपने पिताजी की लिखी हुई किताब पढ़ने में ज्यादा रुचि थी। वो अपने बैग में एक दो किताबें भक्ति विनोद ठाकुर की लेके जाते थे, और जैसे भी टाइम मिलता था या स्कूल का क्लास जो है उनको बोरिंग लगता था तो अपने पिताजी की लिखी हुई किताब पढ़ते थे स्कूल में, उनमें उनकी ज्यादा रुचि थी। जब वो कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में उन्होंने एक सभा शुरू की, जैसे कॉलेज में क्लब होते हैं, क्लब सुना होगा शायद, मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता था तो वहाँ पे एक क्लब था, माउंटेनियरिंग क्लब, मतलब ऐसे युवक थे जो जब भी उनका समय मिलता था पहाड़ पे जाते थे ऊपर ट्रैकिंग करने, उसको माउंटेनियरिंग क्लब बोलते थे, अलग अलग पहाड़ अलग अलग ट्रैकिंग करना, और ऐसे बहुत से क्लब थे, मतलब जिसकी जैसी रुचि है उसको कैसा क्लब बना देते हैं, है ना। तो किसी लोग को ज़्यादा पहलवानी में, स्विमिंग में, या जो भी जिसकी हॉबी है, म्यूजिक में, है ना, म्यूजिक में भी कई तरह के म्यूजिक हैं, ऐसा बहुत से क्लब रहते थे, जैसे सिमिलर रुचि के लोगों का एक क्लब रहता था हमारे कॉलेज में, वो क्लब ज्वाइन करो और आगे बढ़ो, ऐसा ऐसा एक वो था, प्रोत्साहन देते थे। तो एक क्लब की ऐसी कथा है कि मैं वो क्लब में रजिस्टर किया एक बार, और मैंने कहा कि मैं एक यात्रा लेके जा रहे थे कहीं, तो मतलब क्लब का यात्रा, जैसे कुछ तो कुल्लू मनाली के पहाड़ों पे चढ़ेंगे जाके, तो मैं भक्तों से मिला तो भक्तों के साथ संपर्क में आया, मैं एक दो माला करने लगा, तो उन्होंने कहा छुट्टी में क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि ये इन माउंटेनियरिंग क्लब वाले लोगों के साथ जाऊंगा सर कुल्लू मनाली थोड़ा पहाड़ पे थोड़ा ट्रैक करके आएंगे। उन्हें अच्छा, बोले हम लोग भी माउंटेन पे जाने वाले हैं, वो जहाँ नरसिंह देव उग्र स्तंभ है, तो तुमको माउंटेनियरिंग का शौक है तो हमारे साथ आ जाओ। मैंने वो भी अच्छा है वैसे ही है, हाँ बिल्कुल हमारे साथ चलो माउंटेनियरिंग करने के लिए, तो चलो आपके साथ चलेंगे, उधर कैंसिल कर दिया। वैसे भक्त लोग ने अपने साथ ले गए, नरसिंह क्षेत्र जो आंध्रा में है, कई कई पहाड़ों में ऊपर आप देखेंगे नॉन नरसिंह देव की मूर्तियां हैं, वो कई पहाड़ों में कई ट्रैकिंग है, तो उनके साथ लेके गए और नरसिंह देव का आरती किया भक्तों के संग में। उसके बाद फिर मैंने वो क्लब परमानेंटली छोड़ दिया और भक्तों का ही क्लब ज्वाइन कर लिया तो शिला सरस्वती ठाकुर ने एक क्लब शुरू किया उनके कॉलेज में, उस क्लब का नाम दिया चीर कुमार सभा। चीर कुमार सभा का क्या अर्थ है कि जो ब्रह्मचारी रहेंगे आजीवन भर, चीर कुमार सभा, है ना। और लोगों को इनवाइट किया कि क्लब ज्वाइन करो कॉलेज के अंदर, अभी कुछ प्रचार उचार नहीं, ऐसा कि जो आजीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे वो एक क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। और उनका इतना पावर था कि 20-25 जो कॉलेज के छात्र थे ज्वाइन कर लिए, है ना, धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए, वो अकेले रह गए क्लब में है ना, ऐसा बाद में कॉलेज में और सब लोग छोड़ के चले गए, पर उनका ऐसा देखिए पावर था कि उन्होंने 20-25 युवकों को कन्विंस कर दिया कॉलेज में कि हमें आजीवन भर ब्रह्मचारी रहना है, उसको चीर कुमार सभा उन्होंने नाम दिया था क्लब का। तो कॉलेज के उपरांत 25 साल की उम्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत, जो सबसे उत्कृष्ट किताब है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो पूरा ज्योतिष शास्त्र है, ये सबसे जो उत्कृष्ट किताब है ये है सूर्य सिद्धांत। तो 25 साल की उम्र में उन्होंने वो किताब पढ़ के उसके ऊपर टिप्पणी लिखी, और ये किताब इतनी जटिल है, उसको समझना इतना मुश्किल है कि टिप्पणी लिखने के बाद भी वो किताब में 10 या 12 अध्याय ऐसा कुछ। हमारे आईआईटी मुंबई के कुछ छात्र हैं, उनकी बहुत रुचि हुई कि किताब पढ़ी जाए, और काफी इंटेलिजेंट छात्र हैं वो, उन्होंने क्या किया, एक किताब पढ़ना शुरू किया और बहुत समय देने लगे, और चार साल में उन्होंने तीन ही अध्याय पढ़ पाए वो, टिप्पणी के साथ, ओरिजिनल किताब की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो 12 अध्याय हैं उसको पढ़ना और समझना इतना जटिल है, लेकिन सरोजिनी ठाकुर ने उसके ऊपर टिप्पणी लिख दी। उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद भी उनको कोई समझ में नहीं आ रहा, तीन ही अध्याय चार साल में वो कवर कर पाए, 9 अध्याय भी बाकी हैं वो किताब के पढ़ने के लिए। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र पे है ये किताब, तो इतनी जटिल किताब है कि ब्रह्मा जी के पूरे दिन में कब कब क्या क्या होगा है ना, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि आज से 10 कैलकुलेशन करते हैं ना कि अभी ये सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, या हम लोग जो पंचांग निकालते हैं, वो किताब के आधार पर जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है वो बहुत लिमिटेड है। ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में कब कब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कौन सा नक्षत्र कहाँ पे जाएगा, वो पूरा जो है सूर्य सिद्धांत से पता लगाया जा सकता है। बहुत संस्कृत में बहुत जटिल किताब है, समझना ही बड़ा मुश्किल है उसको ऐसा। तो वो किताब पर उन्होंने टिप्पणी ली लिखी, और वो टिप्पणी लिखने के बाद जो सभी पंडित लोग थे उन्होंने कहा कि आपने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही विशेष है, ये कोई भी स्कॉलर पंडित ऐसा नहीं कर सकता है ये किताब को समझना। तो उनको तभी नाम उनका सिद्धांत सरस्वती रख दिया गया, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत नाम आया इस सूर्य सिद्धांत किताब से। और सरस्वती मतलब जो उनके बहुत विशेष ज्ञाता है, सरस्वती जो उनके पंडित हैं या उसको बहुत विशेष रूप से समझे हैं ये किताब को। तो सभी जो स्कॉलर लोग थे, जो बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने उनको ये सम्मान करते हुए उनका सिद्धांत सरस्वती नाम दे दिया। और फिर परंतु बाद में उनका दीक्षा होने के बाद नाम हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति आगे ऐड हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये टाइटल मिलने के बाद 25 साल की उम्र में ये हुआ। 26 साल की उम्र में उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा कि आप दीक्षा लीजिए। किससे दीक्षा लीजिए? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। ये है पूरे विद्वानों ने इनको सम्मानित किया है, इन्होंने जो टिप्पणी की आज भी लोग नहीं समझ पाते हैं, इतने बड़े विद्वान थे सरस्वती ठाकुर। और किनसे दीक्षा लेंगे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। अंगूठा अपना हस्ताक्षर नहीं करते थे वो, भारत में जो हस्ताक्षर नहीं करते अंगूठा लगा दीजिए, उनसे दीक्षा ली। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा इनसे दीक्षा लीजिए, क्योंकि वो परम भक्त थे महाप्रभु के, परम वैरागी भी थे, पर केवल वैरागी नहीं थे, महाप्रभु के परम भक्त थे। तो सरस्वती ठाकुर कहते थे, तो सरस्वती वो भी बहुत कथा है कि किस तरह से दीक्षा नहीं दे रहे थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। और जब उन्होंने जाके वास्तव में उनसे बहुत प्रयास किया, बहुत अनुरोध किया, कहने लगे ठीक है मैं चैतन्य देव से पूछूंगा, महाप्रभु चैतन्य से पूछूंगा कि तुमको दीक्षा देना चाहिए कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि आपसे पूछेंगे तो आप थोड़ा हाँ कहिएगा, इंस्पायर कीजिएगा। अगले दिन गए, आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, तो कहने नहीं मैं भूल गया कल, दोबारा आना वापस आना, ऐसा उनको टरकाते रहे है ना। तो एक दिन वो कहने लगे उनके चरणों में गिर के कि मेरा जीवन जो है ये व्यर्थ है, यदि मैं मेरे जीवन में गुरु की कृपा नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, मेरे जीने का कुछ प्रयोजन नहीं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, तो उन्होंने कहा जाओ गंगा में स्नान करके आ जाओ। तुरंत गंगा में स्नान करके आ गए तो उनको वहां पे दीक्षा दी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने। और दीक्षा के समय उन्होंने उनको आज्ञा दी कि प्रीच द एब्सोल्यूट ट्रूथ विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि आप परम सत्य का प्रचार कीजिए बाकी सब कार्य छोड़ के। तो उसके बाद उन्होंने जो उनका बहुत विद्वत्ता थी, उन्होंने ये सूर्य सिद्धांत और स्कॉलरली सर्कल में उनका बहुत नाम था विद्वानों में, तो वो सब उन्होंने फिर छोड़ छाड़ के पूर्ण रूप से गुरु महाराज की आज्ञा से भक्ति का प्रचार कार्य कैसे किया जाएगा उसी दृष्टि में चलना आरंभ किया। तो उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी प्रीच द एब्सोल्यूट ट्रुथ विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन, और कुछ सोचिए मत, केवल परम सत्य भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए, ऐसे उनको आज्ञा दी। और उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उन्होंने तीन आज्ञाएं और दी उनको, उन्होंने तीन आज्ञाएं और दी उनको। एक आज्ञा दी के डू नॉट स्टे इन द प्लेस ऑफ कली, कि आप कभी भी कली के स्थान में मत रहिएगा। क्या अर्थ, मतलब कलकत्ता में मत रहिएगा, काली का स्थान नहीं कली का स्थान। तो वो गौर किशोर बाबा जी महाराज थे कि महाराज कहते थे कि जो सब जितने बड़े बड़े शहर हैं सब कली के स्थान है, या चार नियम भंग होते हैं सब। तो कलकत्ता उस समय शहर था तो उसको कली का स्थान कहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी कली के स्थान में मत रहिए, शहर में मत रहिएगा। और फिर एक आज्ञा दी के डू नॉट मेक एनी डिसाइपल्स, कभी शिष्य मत बनाइएगा, कली के स्थान में मत रहिएगा, कभी शिष्य मत बनाइएगा। और तीसरी आज्ञा दी डू नॉट एसोसिएट विद एनीवन, मतलब किसी इधर उधर किसी का संग मत कीजिएगा ज्यादा, विशेष दुर्जनों का जो ये है। अच्छा ये बताइए, अभी अगर विश्व भर में प्रचार करना है ना, पहले तो कहा कि विश्व भर में प्रचार कीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, फिर कहा शहर में मत रहिए, तो लोग तो शहर में रहते हैं, कली के स्थान में मत रहिए। दूसरे का कि क्या कहा, शिष्य मत बनाइए, कैसे प्रचार होगा यदि शिष्य नहीं बनाएंगे तो, और किसी से संग मत कीजिए, धाम में रह के भजन कीजिए। ऐसा धाम में रह के भजन कीजिए नहीं बोला, पर कहिए कि किसी से संग मत कीजिए। तो ये तो बहुत ऑपोजिट हो गया, तो एक जो मिशन दिया है और बाद में तीन बातें और कह दी, है ना। तो कोई किसी को कहे कि भाई आप जो है एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाइए खा पी के, है ना, आपकी ऐसे ऐसे मत, ऐसे किसी को कहा जाए कि आप बहुत हृष्ट पुष्ट हो जाइए, और फिर कहे कहे कि उपवास करते रहिए, है ना, कहे कि आप सेहत बनाइए अच्छे से और आप उपवास कीजिए, तो बोले ये तो क्या है, ये तो ऑपोजिट हो गया, सेहत कैसे बनेगी, उपवास करते रहेंगे तो आदमी पतला हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ये कॉन्ट्रडिक्टरी इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये तीन बातें कह दी उन्होंने, और फिर लेकिन भक्ति नारायण ठाकुर तो हम जानते हैं कि कलकत्ता में रहे, कौड़िया मठ स्टार्ट किया और हजारों हजारों शिष्य को दीक्षा दी, और कितने लोगों के साथ उनसे उन्होंने मिले, ब्रिटिशर से मिलते थे सबसे, है ना। तो उनके जो कुछ शिष्य थे या और अन्य भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ शिष्य हैं, उनके भी अपने कुछ शिष्य बाद में कहने लगे कि आपने गुरु महाराज की आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, ऐसा उनको कहने लगे। तो ये कैसे आपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया, आप कलकत्ता में रह गए और सब इन लोगों से मिलते रहे और इतने शिष्य बनाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं कभी कली के स्थान में नहीं रहा, मैं हमेशा गौड़िया मठ में रहा जो कि वैकुंठ है ना, भगवान का मंदिर जो है ये पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में, ये भगवान का धाम है ये मंदिर, है ना, ये दिल्ली के अंदर है पर दिल्ली का भाग नहीं है, क्योंकि ये धाम भगवान का जो मंदिर है वो वैकुंठ हो जाता है, धाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी कली के स्थान में नहीं रहा, मैं हमेशा भगवान के मंदिर में रहा, वैकुंठ में रहा, उनके धाम में, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया, ये सभी मेरे गुरु हैं, ये अपने आचरण से मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। तो अपने सभी शिष्यों को वो गुरु मानते थे, सरस्वती ठाकुर ये सब मेरे गुरु हैं। और फिर कहने लगे कि मैंने कभी किसी का संग नहीं किया, क्योंकि संग का अर्थ होता है किसी से कुछ ग्रहण करना, मैंने एकमात्र मेरे जीवन में मेरे गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण किया है, मेरे गुरु की आज्ञा को ग्रहण किया है, संघ का अर्थ है ग्रहण करना, मैंने और कुछ ग्रहण नहीं किया किसी से, इसलिए मैंने किसी का संग नहीं किया। तो मैंने मेरे गुरु के तीनों आज्ञाओं का पालन किया है। देखिए कितना उनका डीप विजडम था, कितना उनका हृदय जो है वो तत्वों को कितना गहराई से जानते थे, कि मेरे गुरु ने दो आज्ञा दी है उनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, है तो उसको समझ पाए वो, और इतना उनका विवेक शक्ति थी, इतना उतना गुण साक्षात्कार था। तो वो कहते थे कि मैं सोचता था कि मेरे गुरु महाराज वैराग्य में उनके समान कोई नहीं है, वैराग्य नमो गौर किशोर आया साक्षात वैराग्य मूर्ते, वैराग्य में उनके समान कोई नहीं, अतुल्य है वैराग्य में। लेकिन मैं खुद कह रहे हैं सरस्वती ठाकुर, लेकिन मैं सोचता था कि उनका जो ज्ञान है शास्त्र का, जो नॉलेज है, वो उसमें इतने ज्यादा प्रवीण नहीं है। तो ही इज नो वन इज पैरेलल टू हिम इन प्रोनंसिएशन, बट एज फार एज नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर इज कंसर्न, दैट इज हिज देयर इज समथिंग लैकिंग इन हिम, ऐसा उनके मन में ऐसा मैं सोचता था। परंतु एक दिन वो अपने गुरु महाराज के पास गए, उनके गुरु महाराज थोड़ा दूर से ही उन्होंने सुना, उनके गुरु महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखित विलाप कुसुम अंजलि किताब है, जिसमें विरह भाव प्रकट हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। विलाप कुसुम अंजलि के लिखी हुई जो वर्सेस हैं, श्लोक हैं, स्तुति है रघुनाथ दास गोस्वामी की, उसका उच्चारण कर रहे थे, उसका गान कर रहे थे। तो सुन के उनको एकदम से झटका लगा, अरे मेरे गुरु महाराज तो वो सोच रहे थे अंगूठा छाप है, उनको तो हस्ताक्षर भी करना नहीं आता, ये संस्कृत की जो सबसे उत्कृष्ट जो रचना है विलाप कुसुम अंजलि रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखित, ये इसका कैसे उच्चारण कर रहे हैं। तो बहुत चकित हो गए। फिर वो उन्होंने लिखा, उन्होंने अपना कहा कि मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन अभी मुझे मेरी आंखें खुली कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान प्रकाशित करता हूं। क्या श्लोक है, तिशामि एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाशाम्यास्तम भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता तिशान अहम अज्ञान। तो कहते हैं कि मैं खुद वो अज्ञान को दूर करता हूं और भक्तों के हृदय में इसको ज्ञान प्रकाश करता हूं। तो उन्होंने देखा कि मेरे यदि भी मेरे गुरु महाराज पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इतना उत्कृष्ट संस्कृत का श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति का और विरह भाव का प्रकट हुआ है। तो इसलिए तो उनके अपने गुरु महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा जो है बहुत बढ़ गई। फिर एक बार वो मैं 10-15 मिनट और ले सकता हूँ, आज तो उपवास है, तुरंत तो नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जाना है, तो एक थोड़ा सा समय लेता हूँ, आज विशेष तिथि है। तो एक बार वो गंगा पार जा रहे थे, नदी में बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति उनके कहने लगे कि आप सब जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति का, लेकिन आपके गुरु महाराज एक ही जगह बैठ के भजन करते रहते। तो वो कहना चाह रहे थे कोई व्यक्ति कि आप उनसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ा बढ़ के हैं, ऐसा कोई व्यक्ति उनको कह रहे थे सरस्वती ठाकुर को। तो सरस्वती ठाकुर जो है उनकी गुरु में बहुत श्रद्धा थी और बहुत नम्र भी थे, तो कहने लगे देखिए ये जो नाव चल रही है इसके शाफ्ट क्रैंक मूव कर रहा है ना, मूविंग पार्ट्स रहते हैं, दे आर मूविंग बट द बैटरी इज स्टेशन इन वन प्लेस। वो जो है बोट में बैटरी लगी हुई थी और बैटरी से सब पावर आ रही थी। तो बोले देखिए हम देख रहे हैं कि जो है शाफ्ट मूव कर रही है, द क्रैंक्स आर रेटलिंग, परंतु पावर कहाँ से आ रही है, जो बैटरी एक स्थान पे है उससे पावर आ रही है। मैं इधर उधर जा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे जितनी भी शक्ति है वो मेरे गुरु महाराज से आ रहे, वो बैटरी वहां पे है, मेरे को शक्ति नहीं वहां से मिलेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए बहुत ये जो भावना है ये सभी में होनी चाहिए, कि वास्तव में हर शिष्य को जानना चाहिए उनकी गुरु की कृपा, उनकी गुरु की इच्छा ही बैटरी है हमारी, उनके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम इतना बड़ा जाके प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं, गीता भागवत के श्लोक बोलते हैं और लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं, हम सोचते देखो मैं कितना बड़ा पंडित हो गया, मेरे गुरु महाराज भी इतना प्रभावशाली लेक्चर नहीं दे सकते, ऐसा व्यक्ति में कभी भी भावना आ जाती है। उसे जानना चाहिए कि हम वास्तव में जो भी गुरु की दी हुई कृपा है, शिक्षा है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वास्तव में उनके ही कृपा से मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सेवा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, केवल एकमात्र मेरे गुरु की कृपा है। तो मैं 2 मिनट चाहूंगा कि मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में, उनसे 2-3, 4-5 बार मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। प्रथम बार 2013 में हम कुंभ मेला में सेवा कर रहे थे, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी आए और मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। भक्तों ने बोला कि दामोदर दास जो हैं ये संभाल रहे हैं यहाँ का जो भंडारा किचन व्यवस्था। तो महाराज मेरे पूछे, सो व्हाट हैव यू मेड फॉर द डिवोटीज टुडे, आज सुबह क्या बनाया है? तो मैंने कहा महाराज हमने आलू पराठे बनाए हैं, तो हम तंदूर के आलू पराठे बनाए थे उस दिन। तो कहने लगे फॉर एवरीवन, सबके लिए बनाए हैं आपने? तो मैंने बोला हाँ हमने सबके लिए बनाए हैं, जितने भी भक्त हैं। मैंने 2 तंदूर लगा रखे थे बड़े बड़े, एक में 40 पराठे बनते थे, थोड़ा सा ऐसा किचन का लॉजिस्टिक्स बता रहा हूँ एक तंदूर में एक समय पे। तो हमने सब भक्तों के लिए बनाए थे, बड़ा संगत था कुंभ मेला में। तो महाराज सेड आई वॉन्ट टू कम एंड डिस्ट्रीब्यूट, मैं खुद आके बांटूंगा। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप यहाँ बैठिए, हम बांटेंगे, आप भक्तों को ऐसा देखिए, आप यहाँ पे रहिए, आपकी प्रस्तुति, आप यहाँ पे बैठेंगे तो भक्तों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, है? तो अच्छे से आलू पराठे एक एक दो दो और खाएंगे सब लोग लेकर के। तो नहीं नहीं बोले कि मैं बांटूंगा। तो 2013 में तो उस समय जब महाराज आए तो उस समय उनका तबीयत इतना अच्छा नहीं था और कुंभ मेला में जनवरी था, बहुत ठंडी थी, लेकिन फिर भी महाराज बोले नहीं मैं बांटना चाहता हूँ। तो फिर अभी हम तो सेवक हैं तो हम लोग ले लिए हाथ में थाली, उसको पराठा थे, तो पूरा जो बैठे हुए थे भक्त लोग सबको महाराज जाकर के एक एक पराठा अपने हाथ से दिए, आलू का पराठा। और भक्त लोगों का कितना उत्साह, कितना उल्लास बढ़ गया, है ना? और देखते रहे कि दूसरा कब आएगा, तीसरा कब भी महाराज सबको एक ही दे दिए। फिर बाद में हमने कहा चलो अभी रोटी बांटो उसके पीछे पीछे, पहले एक एक पराठा पूरा होने दो सबको, आलू का पराठा। और ये कुंभ में अभी जो अर्धकुंभ हुआ 2019 में, तो फिर महाराज आए, हर कुंभ में आते हैं, तो फिर बोले कि आज क्या बनाया? हमने बोला आज पालक पराठा बनाया, तो मैं बांटूंगा अभी आकर के। देखो 6 साल बाद भी वैसे ही उनका उत्साह है भक्तों का सेवा का, और दोबारा पूरा एक लंबा लाइन था कुंभ मेला में, ऐसा लंबा लाइन, सबको अपने हाथ से आकर के पालक का पराठा खिलाया, है ना? तो अपने हाथ से आके ऐसा विशेष मैं बहुत प्रभावित हुआ कि अपने उनकी इच्छा है कि मैं आके भक्तों को सेवा करूं, प्रसाद वितरण करूं, भक्तों को प्रसाद पाके आनंद हो। तो इस तरह से और हमको भी आशीर्वाद दिया कि भक्त लोग प्रसन्न है प्रसाद से, तो उनके प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से हम ये सेवा कर पा रहे हैं। तो इस तरह से गुरुजन के आशीर्वाद से, उनके कृपा से ही हम जो कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बैटरी का उदाहरण दिया, बैटरी एक जगह है लेकिन पावर वहीं से आ रहा है, जो बाकी सब कार्य हो रहे हैं तो पावर वहां से आ रहा है, स्टेशन बैटरी से। तो ऐसे ही हमारे गुरुजनों की कृपा से हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो ये सिद्धांत और ये बात हमें अपने आप को बार बार याद दिलानी चाहिए और हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो जब फिर उन्होंने ये धारणा कर ली कि मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, उनके उनके तो वो कहने लगे मैं कैसे करूंगा ये प्रचार का कार्य, ये नास्तिक जगत, कैसे इनको मैं कृष्ण भक्ति का उपदेश दूंगा। तो उनके स्वप्न में भक्ति विनोद ठाकुर, अच्छा कुछ समय के बाद भक्ति विनोद ठाकुर और गोरक्षदास महाराज महाराज तिरुभाव हो गया। वास्तव में उनके दीक्षा होने के पश्चात ही थोड़े समय के बाद ही उनके दोनों जो गुरु थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके पिताजी थे, गुरु थे उनके सहज रूप से, और गोरक्षदास बाबा जी महाराज, तो दोनों गुरु जब उनके उनका तिरुभाव हो गया तो भक्ति विनोद ठाकुर का हृदय में, उनका हृदय बहुत जो है द्रवित हो गया और थोड़ा सा उनके हृदय में मायूसी आ गई कि अभी मेरे गुरु जो नहीं है उनके बिना, उनके एंकरेजमेंट के बिना उनको प्रोत्साहन देते थे दोनों उनके गुरुजन के आप ये महाप्रभु का प्रचार कार्य करना है। कहने लगे अभी मुझे जीवन में कौन प्रोत्साहन देगा, मुझे कौन मार्गदर्शन देगा, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सोच के वो बहुत मायूस हो गए कि अभी मैं बिल्कुल जो है हेल्पलेस हो गया हूँ। तो उनके गुरु महाराज दोनों उनके स्वप्न में आए, भक्ति विनोद ठाकुर, और यही नहीं महाप्रभु उनके पार्षद उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि सिद्धांत सरस्वती तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम ये प्रचार कार्य शुरू करो और देखो कैसे ये प्रचार कार्य बढ़ेगा। तो महाप्रभु उनके दोनों गुरुजन सभी हमारे आचार्यों का आशीर्वाद उनके ऊपर था और उन्होंने प्रचार कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे अपना जो है अपना जो स्पिरिचुअल शक्ति है मुझे साधना अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। वास्तव में जो व्यक्ति प्रचार करते हैं उनकी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिना अच्छी साधना के जो है हम वास्तव में इफेक्टिव प्रचार नहीं कर पाएंगे, लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रचारकों की साधना बहुत दृढ़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कली ये शहरों में जाके प्रचार करना है, कितने नास्तिक लोग से मिलूंगा, मुझे उसकी तैयारी करनी होगी, मुझे हृदय अपना शुद्ध करना होगा, मुझे भगवान की कृपा प्राप्त करनी होगी। तो ये सोच के उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं पहले भगवान का 100 करोड़ नाम का जप करूंगा, उसको कहा कि शत कोटि नाम यज्ञ, मैं भगवान का 100 करोड़ नाम लूंगा। 100 करोड़ नाम मतलब 1 बिलियन, 1 बिलियन होली नेम I will chant first as a preparation to preach in the place of Kali. Kali किस Kali के शहर में जाके प्रचार करना है तो मैं जो मुझे तैयार अपने आप को तैयार करना होगा। तो 100 करोड़ नाम जप करने का प्रतिज्ञा लिया उन्होंने, शत कोटि नाम यज्ञ, रोज 192 3 लाख नाम प्रतिदिन, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे दिन रात उन्होंने नाम का जप किया। 10 साल के लिए तैयारी की, 10 साल लगा उनको, अगर 192 राउंड रोज किया जाए तो 10 साल में आदमी बिलियनेयर बन सकता है। वो बिलियन जो है वो हमेशा चीर काल के लिए अनादि काल के लिए उसके बाद रहेगा। यहाँ के बिलियनेयर तो अगले जन्म में कौन सी योनि में जाएंगे पता नहीं, सब बिलियन ही छूट जाएगा, दूसरे लोग के नाम पर लग जाएगा धन। पर अगर वास्तव में किसी को बिलियनेयर बनना है, शत कोटि नाम यज्ञ, अगर 100 करोड़ नाम भगवान का जप करना है, 1 बिलियन नेम, तो 16 माला के हिसाब से 120 साल लगेंगे। हम यदि 16 माला प्रतिदिन करें तो 120 साल में हमारे 1 बिलियन नाम चांट होगा, शत कोटि नाम यज्ञ, जो उन्होंने 10 प्रचार की तैयारी में। आप सोचिए हम तो जो पूरी जिंदगी भी में पूरा जिंदगी में नहीं, जब मैं अपने लिए तो कह देता हूं, आप सब भक्तों के लोग के नहीं, तो मैं तो पूरी जिंदगी में 100 कोटि नाम यज्ञ जप नहीं कर पाऊंगा। लेट शुरू किया है, 20 साल की उम्र में शुरू किया है और कलयुग में तो उम्र भी ज्यादा नहीं है, 100 तो कोई जीता नहीं है, 60 के बाद में विकट गिरना शुरू हो जाता है, लड़खड़ाना तो शुरू हो ही जाता है तो शत कोटि नाम कहाँ से है ना पूरा करेंगे। 16 माला की स्पीड से तो 120 साल चाहिए तो 10 साल में प्रचार कार्य की तैयारी करने के लिए उन्होंने शत कोटि नाम यज्ञ करके 10 साल में पूरा किया। और वो 10 साल में नाम जब भी किया और जहाँ पे रह रहे थे मायापुर धाम में और वहाँ पे उसका व्यवस्था भी देखते रहे और कोई अगर विजिटर आता तो उससे मिल भी लेते थे। ऐसा नहीं कि अभी डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया, अभी किसी से बात भी नहीं करूँगा कुछ नहीं, कोई मायापुर धाम में आता था उससे मिल के बात भी कर लेते थे, जब भी करते थे, थोड़ा व्यवस्था भी देखते थे। तो बाकी सभी भी कार्यकलाप देखते हुए, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हुए उन्होंने शत कोटि नाम यज्ञ किया 10 साल के अंदर, ताकि वो प्रचार कार्य जो है ठीक से कर सके ऐसा, और उसमें दृढ़ रह सके। और फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की जो सज्जन तोषनी किताब थी, मैगजीन थी सज्जन तोषनी, उसको इंग्लिश में प्रिंटिंग शुरू किया। तो वो पहले आचार्य थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस। कृष्णनगर में उन्होंने प्रिंटिंग शुरू की और उन्होंने गौड़िया मठ का लोगो बनाया। लोगो तो लोगो आप देखेंगे, लोगो में अलग अलग प्रकार के भागवत है, भागवत विधि में, अर्चना विधि में आप देखेंगे लैंप है, घंटी है। उन्होंने दो विधि बताए, भागवत विधि, अर्चना विधि, लोगो में उनके सिंबल डाले। तो लोगो में राधा कृष्ण सबसे ऐसा बीच में है, साइड में भागवत, भागवत मार्ग है, साइड में अर्चना मार्ग है। तो भागवत मार्ग में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का फोटो डाल दिया। तो लोग कहने लगे, अरे आपने ये लोगो बनाया है जो है हमारा प्रमाणिक वैदिक लोगो, सब कुछ जो है, दीप है, घंटी है, ये मॉडर्न मशीन क्या डाल दिया अपने लोगो में, है ना, ये मॉडर्न इन्वेंशन, मशीन, मशीन का कोई धार्मिक चीजों में लोगो में कोई डालता है क्या ऐसा? तो कुछ लोग उनसे कहने लगे, तो बोले नहीं, ये मशीन जो है ये भागवत का प्रचार करने के लिए है, ये भी बहुत सीक्रेट है। तो उनका ऐसा कन्विक्शन था, तो उसको बृहत मृदंग बोलते थे जो प्रिंटिंग प्रेस को, कि इसका हमारे मृदंग का आवाज तो पड़ोसियों तक ही जाएगा, है ना, उससे पार तो नहीं जाएगा। तो लेकिन ये मृदंग का आवाज पूरे विश्व भर में जाएगा, जो यहाँ से किताबें छपेंगी का प्रचार जो है, महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार इस किताब के थ्रू देश विदेश में होगा। तो उसको बृहत मृदंग कहते थे। तो वो बार बार कहा करते थे कि हमें भगवान कृष्ण पे आधारित रहना है, हमें शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है। डू नॉट फ्लैटर मटेरियलिस्ट, के जो मटेरियलिस्ट लोग हैं उनकी स्तुति करने की जरूरत नहीं है, उनकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। हम परम सत्य प्रचार करेंगे, उनको कहेंगे कि ये कृष्ण भक्ति का सिद्धांत है, आप इसको आचरण कीजिए, इससे आपका जीवन सफल बनेगा। यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो हम हमारे प्रचार कार्य के लिए सब कुछ देंगे, उनका दृढ़ विश्वास था ऐसा। तो और कहते थे कि यदि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ विफल है। तो लाइफ्स ओनली गोल इज टू ग्लोरीफाई कृष्णा, बार बार ये कहते थे कि जीवन, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान का गुणगान करना, भगवान की स्तुति करना। तो ग्लोरीफाई कृष्णा इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ, ये बहुत इस पे वो करते थे। और कहा गया है वो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर, उनको हरि कथा अडिक्ट कहा जाता था, उनकी विशेष रुचि थी कि भगवान की कथा करते थे और दिन में कभी इनसे कभी उनसे जो भी आता था उनके साथ समक्ष कथा करते थे। वो तो कहते थे लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ, है ना, कितने कितने लोग सुनते हैं, भागवत में श्लोक भी है, सहस्रशा क्या श्लोक है वो जो श्रोतव्य आदिनी राजरिंद्रा निणाम संति सहस्रशा, कितने टॉपिक है सुनने के लिए, आप देखिए कितने वीडियो है देखने के लिए, अंत नहीं है, है ना, मोबाइल फोन ही पूरा चौकअप हो जाता है, इतना कुछ आता है कि ये देखिए, ये सुनिए, ये देखिए, ये सुनिए। तो हजारों हजारों विषय है जिनके हम लोग जिनका देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहते थे लोगों ने मन बनाया है कि सब कुछ देखेंगे सुनेंगे भगवान कृष्ण के नाम को छोड़ के, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम को छोड़ के बाकी सब चीज का चर्चा करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। उन्होंने बोला कि मैंने मन बनाया है कि मैं एकमात्र भगवान कृष्ण का नाम और कथा ही कहूंगा। उन्होंने बोले मैंने उनका उल्टा मन बना लिया है ऐसा। तो कोई भी आता था उनके साम कृष्ण कथा, कृष्ण नाम चर्चा करते थे, हरि कथा अडिक्ट कहा जाता था, दिन में 10 घंटा 12 घंटा कथा करते थे। और कभी बीमार होते थे तो भी 6 घंटे से कम नहीं कथा करते थे, 6 घंटा। तो एक बार थोड़ा जब थोड़ा वृद्ध हो गए, उनके हार्ट में थोड़ा पाल्पिटेशन हुआ ऐसा, तो एक डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि आपका थोड़ा हृदय जो है इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, पाल्पिटेशन, तो आप जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतनी ज्यादा वाणी दिन में आप कथा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इतने ज्यादा बोलने से आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, आप थोड़े कम कर दीजिए, तो आपका प्रवचन है थोड़ा इसको कम कीजिए, हरि कीर्तन, हरि कथा कम कीजिए। तो सरयू ठाकुर ने कहा देखिए ये जो मनुष्य जन्म है इसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान के गुणगान करना, द ग्लोरीफाई कृष्णा इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ। पाइया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण, तार जन्म है न व्यर्थ हईला। पाइया अमृत धुनी पिए विष गर्थ पानी, जन्म आशा के ने नाही महिला। तो बताइए, देखिए महापुरु ने सिखाया है, पाइया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण। यदि महाप्रभु के गुणगान का चर्चा नहीं है, तार जन्म हेन व्यर्थ हैला, तो जन्म व्यर्थ है। आपको अमृत पान करने को मिला फिर भी आपने नाली का पानी पिया, किसी को अमृत दिया जाए लेकिन बोले नहीं मैं तो गटर का पानी ही पीऊंगा, तो आपका मनुष्य जन्म जो है बिल्कुल निरर्थक हो गया। जन्म ही ऐसा कहने नहीं मिला, अरे आप तो जन्म के साथ ही मर जाते, क्यों जी रहे हैं सब नाली का पानी पीने के लिए। आपको मनुष्य जन्म में अमृत पान करने का अवसर है फिर भी आप गटर का पानी पी रहे हैं। तो ये मनुष्य जन्म में सभी चर्चाएं बाकी जो हैं वास्तव में भगवान के कृष्ण नाम और कृष्ण कथा को छोड़कर, ये बाकी सब टॉक्स जो हैं वो सब गटर के पानी पीने के समान है, और भगवान का कथा कीर्तन जो है अमृत के समान है। तो लोगों का टेस्ट उसमें ज्यादा है देखा जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर को एक घंटा प्रवचन दिया कि ये जीवन जो है एकमात्र हरि कथा और हरि कीर्तन का अमृतमय पान करने के लिए है। तो डॉक्टर जो है पूरा कन्विंस हो गया, तो उन्होंने आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो सभी शिष्य लोग कहने लगे डॉक्टर आया था हमारे गुरु महाराज का ट्रीटमेंट करने लेकिन उनका भव रोग निकाल दिया, द डॉक्टर हैज बीन ट्रीटेड। तो ऐसा सरस्वती ठाकुर का इतना उनका कन्विक्शन था, इतना उनका दृढ़ भक्ति थी, तो उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से आज और उनके जो शिष्य शिला प्रभुपाद उनका ही वो जो स्पिरिट था वो लेके उन्होंने देश विदेश में प्रचार किया। जो उनकी कन्विक्शन थी उनकी जो स्पिरिट थी वही उन्होंने अपने शिष्य शिला प्रभुपाद को दी, वही से उन्होंने प्रचार किया और अपने शिष्यों को वही उन्होंने परंपरा में शिक्षा दी। और शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वैसे ही स्पिरिट से देखिए वृद्ध अवस्था में भी ट्रेवल करके भक्तों को इंस्पायर करके, मैं जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को देखता हूँ इतनी वृद्ध अवस्था में भी महाराज कितना अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, प्रेरणा देते हैं। अभी कल सुना के बॉम्बे चले गए, मैं आया तो मंदिर में थे, फिर बॉम्बे निकल गए रथ यात्रा, फिर आ जाएंगे फिर दूसरी जगह, है ना, सभी जगह जा करके भक्तों को प्रेरणा दे करके वही जो स्पिरिट जो शुरू की वो परंपरा में हम देख रहे हैं। प्रभुपाद के जो प्रिय शिष्य हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमें भी उनसे ये धरोहर लेनी है जो उन्होंने श्री सरस्वती ठाकुर ने दी। धरोहर जो है महाप्रभु के इस संकीर्तन का हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करें उनके समान, जो उन्होंने शिक्षाएं दी पहले अपने ग्रहण करना होगा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, और वो हम उसे बांटे भी। हरे कृष्णा। तो आपका क्षमा चाहता हूँ, मैंने काफी ज्यादा समय ले लिया है। तो शिला भक्तिधाम धृति ठाकुर प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा, तो थोड़ा संक्षेप में, अब आज शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, और शिला गौर गोविंद महाराज का भी आज जो है तिरुभाव तिथि है। तो मैं थोड़ा सा ये पढ़ देता हूँ। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर, श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे। उनके पुत्र कानू ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। जब कानू 5 वर्ष के थे माँ जाह्नवा उन्हें वृंदावन ले गई। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामियों ने प्रफुल्ल हृदय से उनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वादश गोपालों में से एक ग्वाल बाल के रूप में बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। और श्री गौर गोविंद महाराज के बारे तो हम सब जानते ही हैं, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। और नरसिंह देव स्वयं एक पुजारी को आके बोले थे कि मैं इन शुद्ध भक्त को मैं ले जाऊंगा आपके, पहले बोले मैं एक पुजारी को ले जाऊंगा, तो बोले नहीं नहीं यहाँ पुजारियों की बहुत कमी है, सेवा कौन करेगा। फिर बाद में बोले कि नहीं फिर मैं आपके एक महाराज सन्यासी जो है वो मेरे को प्रिय उनको ले जाऊंगा। तो अगले दिन ही गौरविंद महाराज भागवत कथा देते हुए कथा करते हुए भगवान का व्यासासन पे ही ऐसा कथा करते हुए नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़े थे। तो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत शुद्ध भक्त थे, उन्होंने उनके बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सुंदर उनके शिक्षाएं भी हैं, तो बहुत हमारे प्रेरणादायक गुरुजन हैं। तो उनको भी हम आज प्रणाम करना चाहेंगे, उनके चरणों को मतलब उनके आशीर्वाद की याचना करना चाहेंगे। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद,
हरे कृष्णा। तो एक बार कल्ता ध्वनि के साथ उत्साह के साथ प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि प्रभु जी जब भी दिल्ली आए, अभी जैसे आएंगे प्रभु जी विजिट, तो जरूर पंजाबी भाग आए और यहाँ पे भक्तों को आगे संग दें, हरे कृष्ण। तो अभी आगे का जैसे प्रोग्राम है तो 10:30 बजे से वैष्णव भजन है और 12 बजे भोग है और 12:30 बजे राजभोग आरती है और 1 बजे यहाँ पे पुष्पांजलि होगी श्रील भक्ति सेन से ठाकुर जी के लिए, फिर 1:15 बजे सभी के लिए प्रसादम की व्यवस्था है, हरे कृष्ण।